आसमान से खून बरसा, सुबह के वक्त घड़े मटके और बर्तन खून से भरे हुए पाए गए। जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून पाया जाता। जब उस ऊंट को जिवा किया और आग पे रखा तो उसका गोश्त आग की तरह सुर्ख बन गया और जब उसको पकाया गया तो वो कड़वा हो गया। सरे मुबारक के आते ही उसके घर के दरो दीवार से खून बहने लगा। जब इस तरफ तवज्जो की गई तो उसने पूछा, ये औरत कौन है? 3 दफा उसने अपना यह सवाल दोहराया मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एक मेड ने जवाब दिया कि जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद गुस्से से लाल पीला हो गया। वल्लाह तूने मेरे सरदार को कत्ल कर डाला, मेरे खानदान का निशान मिटाया, मेरी शाखें काट दी। अगर उससे तेरा दिल ठंडा हो सकता है तो हो जाए।
कद्रो शाने अहले बैत।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेब सीरीज का नाम है दास्ताने करबला और आज उसकी 9वीं एपिसोड है। नाज़रीन, करबला कोई आम वाकया नहीं था। करबला में आले रसूल के साथ जो हुआ वो एक बहुत बड़ा सानहा था। तारीख में कभी भी किसी भी नबी की आलो औलाद के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। जालिम यजीदियों ने जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को बेदर्दी से शहीद कर दिया और आपके सरे मुबारक को जिस्म अकदस से जुदा कर दिया तो सिर्फ जमीन ही नहीं कांपी बल्कि कई आलम इस वाक़े से मुतासिर हुए। तारीख की किताबों में आता है कि जिस वक्त इमाम मजलूम रदी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, आसमान से खून बरसा, सुबह के वक्त घड़े मटके और बर्तन खून से भरे हुए पाए गए। उस रोज बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून पाया जाता। यजीदी लश्करियों ने जब आप रदी अल्लाह तआला के लश्कर में एक ऊंट पाया और शहादत इमाम हुसैन के बाद जब उसको जिबा किया और आग पे रखा तो उसका गोश्त आग की तरह सुर्ख बन गया और जब उसको पकाया गया तो वो कड़वा हो गया। गोया कुदरत भी जालिमों के जुल्म पर अपनी नाराजी जाहिर कर रही थी। नाज़रीन, यजीदियों ने नवासे रसूल इमाम हुसैन को सिर्फ शहीद करने पर इक्तफा ना किया। अस्वद बिन खालिद ने नालैन मुबारक तक ले ली। इस दौरान खेमे में बीमार और कमजोर हालत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला भी मौजूद थे। जब शिमर बदबख्त की नजर आप पर पड़ी तो उसने कहा, इसको क्यों छोड़ा हुआ है, इसे भी कत्ल कर दो। लेकिन अल्लाह पाक ने एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम के दिल में रहम डाल दिया। उसने कहा, ये बीमार हैं, कम उम्र हैं, इन्हें कत्ल न करो। इस दौरान इब्ने साद वहां आया और हुक्म दिया कि औरतों के खेमों में कोई दाखिल ना हो और जो सामान लूटा गया है वापस कर दिया जाए, मगर किसी ने कुछ वापस ना किया। इसके बाद इब्ने साद ने तमाम शुहदा के सर काटने का हुक्म दिया और फिर वो मुबारक सर नेजों पर बुलंद करके इब्ने ज़ियाद के पास भेजे गए। खुद इब्ने साद 11 मुहर्रम तक करबला में ठहरा रहा, अपनी फौज के मरने वालों की नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें दफन कर दिया। मगर शहदाए राह हक के जिस्मों को ऐसे ही बेगोरो कफन पड़े रहने दिया गया। फिर पर्दा नशीन खवातीन जो बीमार ज़ैनुल आबिदीन और चंद छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे रात भर बेसरो सामानी के आलम में थी, उन्हें कैदी बनाकर कूफा रवाना हुआ। फिर जब इब्ने साद करबला से चला गया तो कबीला बनी असद के लोगों ने आकर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ी और हजरत इमाम हुसैन और आप रदी अल्लाह तआला के तमाम साथियों के जिस्मों को दफन कर दिया। नाज़रीन, इमाम अली मकाम और दीगर शहदा के सरे मुबारक खौली बिन यजीद और हमीद बिन मुस्लिम के साथ इब्ने ज़ियाद के पास भेजे गए। इब्ने ज़ियाद कूफा के गवर्नर हाउस में बैठा था और लोगों को महल में आने की आम इजाजत थी। जब दरबार लोगों से भर गया तो इब्ने ज़ियाद के सामने इमाम आली मकाम का सरे अकदस एक थाल में रखकर पेश किया गया। सरे मुबारक के आते ही उसके घर के दरो दीवार से खून बहने लगा। उस वक्त जालिम इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो बार बार आप रदी अल्लाह तआला के लबों और दांतों को मार रहा था। उसके बाद अहले बैत के दूसरे अफराद इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किए गए जिनमें इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा भी मौजूद थी। आपकी तबीयत उस वक्त बहुत खराब हो रही थी। आप रदी अल्लाह तआला महल में पहुंचकर एक साइड में बैठ गईं और आपकी मेड्स ने आपके गिर्द सर्कल बना लिया, आपकी जो खादिमाएं थीं। इब्ने ज़ियाद की जब इस तरफ तवज्जो गई तो उसने पूछा, ये औरत कौन है? 3 दफा उसने अपना सवाल दोहराया मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एक खादिमा ने जवाब दिया कि ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नवासी फातिमातुज़्ज़हरा रदी अल्लाह तआला की बेटी और हजरत इमाम हुसैन की बहन है। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद जो फतह कामयाबी के नशे में चूर था, आप रदी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी करते हुए उसने कहा, तूने देखा अल्लाह ने तेरे घर वालों के साथ क्या सलूक किया? आप रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, उनके लिए शहादत लिखी जा चुकी थी इसलिए वो अपनी शहादत की जगह पर पहुंच गए। अन करीब अल्लाह तुझे और इन्हें एक जगह जमा फरमाएगा, उस वक्त वो उसके सामने उसका इंसाफ तलब करेंगे। ये जवाब सुनकर इब्ने ज़ियाद गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने बेताब होकर कहा, خدا نے تیرے نافرمان سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر آپ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں اور آپ بے اختیار رو پڑی۔ روتے روتے آپ نے اس ظالم سے کہا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر بیمار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر حضرت زینب بیچ میں آ گئیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد سر انور کو یزید کے پاس لے جانے کے لیے شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوران سفر سر مبارک سے عجیب و غریب کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ جب امام مظلوم کا سر مبارک اس ظالم یزید کے پاس پہنچا، یزید کے ہاتھ میں اس وقت ایک اسٹک تھی، وہ اس اسٹک سے، اس لکڑی سے سر مبارک کو چھونے لگا۔ اس وقت وہاں پر ایک کرسچن بادشاہ روم کا سفیر موجود تھا، وہ سر مبارک کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا، ہمارے یہاں ایک آئرلینڈ کے چرچ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کے خر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے، ہم ہر سال دور دور سے اس کی طرف حج کی طرح جاتے اور منتیں مانتے ہیں اور اس کی ایسی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے تم اپنے کعبے کی، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ باطل پر ہو۔ ایک یہودی نے کہا، مجھ پر اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام میں 70 پشت کا فاصلہ ہے، یہود اس وجہ سے میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور تم نے خود اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، حیرانی سے اس نے یہ الفاظ کہے۔ خیر ناظرین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بارے میں ہم نے کل سن لیا تھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں اسے دفن کیا گیا۔ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں اختلاف بھی ہے، بعض کے نزدیک جسم مبارک کے ساتھ ہی سر مبارک بھی دفن کیا گیا تھا۔ اہل بیت کے مدینہ پہنچنے کا واقعہ یہ ہے کہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ میں آنے کے وقت کوفہ کے گورنر تھے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے، انہیں بلوا کر یزید نے ان کی نگرانی میں اہل بیت کی خواتین اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے بھجوا دیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ یزیدیوں کے انجام کے بارے میں سنیں گے۔ کہتے ہیں نا، ہر ظلم کا انجام برا ہے۔ آئیے اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یحییٰ بن زکریہ کے بدلے 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 140,000 کو مارا۔